તારીખ 23/10/1991 શ્રી સમયસર કાથા 15 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ગ્વાલિયરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 6
संतुलन के लिए ये काम की चीज है। केवल ज्ञान के पर्याय के परिदृश्य में प्रभाव ऐसे तरीके बता सकते हैं प्रशासन यात्रा में। तो यहाँ हमारा संतुलन कैसे बैठे, अगर हम पर्याकरण और पर्याय का यथार्थ समझ तब पर हमारा हमारा संतुलन नहीं रहेगा, तो बैलेंस गंवाने से ही काम चलेगा, एक नई आपत्ति खड़ी होती। जैसे हम हमारे लड़के को ऐसा कह सकते हैं कि तुम इतनी गड़बड़ी करता है तो ये हमारे खानदान में ये बात चलने वाली नहीं है, तो हमारे हमारे बच्चे ही नहीं हो, हमारे लड़के ही नहीं हो, चले जा रहे थे क्या कहेंगे, बहुत तेज हो जाएंगे तो क्या कहेंगे। जोर देने में और जोर देते हैं उसको प्रदर्शित करने में भाषा जो बदलती है उसमें द्रवगुण पर्याय का बंधारण साथ में लेते हैं तो मेल नहीं बैठता है। अगर कोई काम 5 मिनट के लिए बिगड़ जाता है तो सुबह सुबह हमको ये बोलना पड़ता है कि इतनी देर लगा दी इस काम में, जिस काम पड़ गई तब 5 मिनट 8 बजे काम होना चाहिए था, 8:05 होगी सारा काम चौपट हो गया। ये कहेंगे कि तुमने सुबह सुबह इतना टाइम खराब कर दिया, सुबह ही शाम लग पड़ गई हमारे तो। कोई ज़्यादा परेशान करता है तो उसको परेशानी दिखाने के लिए कहेंगे हमारा तुम लोई पीते हो, लोग पीते हो, क्या कहते हैं क्या कहते हैं पिता है इस तरह से जो भी भाषाएं हैं कितने भी जोर से तो उसका प्रयोग होता है कितनी बैलेंस रहता है, इसलिए बैलेंस रहता है तो वस्तु स्थिति का हमें ज्ञान है। लड़के को हमारा नहीं है ऐसा कहते हुए भी ज्ञान में रहता है तो मिलता है हमारा, यदि कहते हैं कि हमारा है, दूसरे वाले को कहने का जरूरत भी नहीं है कि हमारा नहीं है, वो कहने की भी जरूरत नहीं है। इस तरह से साधना में द्रवगुण पर्याय नहीं लगता है, ऐसी भाषा की शैली तीव्र हो जाती है और इस तरह साधना में ये अनुकूल भी है, साधना के लिए शैली अनुकूल भी है, फिर भी हमारा बैलेंस रहने का तो द्रवगुण पर्याय की यथार्थ समझ से ही होता है। यहाँ भी इसकी उपयोगिता भी करना है तो एक ही विषय में कितने हद में इसकी उपयोगिता है, किस हद में इसकी उपयोगिता नहीं है, ये बात स्पष्ट नहीं होने से शास्त्र के या तत्व ज्ञान के अभ्यास करने वाले को बहुत सी कठिनाइयां कोई बात कर ली हो और छूटते नहीं हो तो दृष्टि कम हो जाता है, ऐसा ऐसी बहुत ही गड़बड़ी चल जाती है। फिर ये बात की विषय थोड़ा ऐसा ही है कि हमें थोड़ा गहराई से इसको स्वीकार करना पड़ रहा है, तो गहराई से प्रवेश करने के बाद भी इसकी जो गहराई है वो अच्छी तरह समझ में आए तो बिना
ज्ञान सामान्य का अवलंबन देने वाले का लक्ष्य
के ऊपर बिना कृतार्थ का लक्ष्य ज्ञान सामान्य का अवलंबन अवलंबन के आविर्भाव दोनों बात कनेक्ट है। एक बात नहीं जिसको स्वभाव का लक्ष्य होगा उन्हीं ज्ञान सामान्य का आविर्भाव करके संबोधन करेगा और जो ज्ञान सामान्य का आविर्भाव करेगा उसके स्वभाव का लक्ष्य होना आवश्यक है। नहीं होता तो ज्ञान ज्ञान सामान्य का आविर्भाव होगा भी नहीं। ये दोनों बात बिल्कुल कनेक्ट है। तो हर जगह तो हर बात कह नहीं सकते। आचार्य जी जहाँ लक्ष्य की बात चलिए वहाँ लक्ष्य चलेगी, वहाँ आविर्भाव की बात चलिए आविर्भाव की चलेगी, अवलंबन की चलिए अवलंबन की चलेगी। अब बात रही दूसरी जैसे वास्तव में क्या होता है। आचार्य महाराज ने 15वीं व्याख्या में क्या स्पष्ट कर दिया कि जिसको ज्ञान विशेष का आविर्भाव है ऐसे सभी अज्ञानी जन की क्या हालत है। जिसको ज्ञान विशेष का आविर्भाव है वो ज्ञेय का आश्रय में चला जाता है। इस ज्ञान में जो जो भूत प्रतिमा होता है अनिवार्य रूप से उनको उन ज्ञान का आश्रय हो ही जाता है। इसलिए ज्ञान विशेष का आविर्भाव की जगह एक और शब्द का भी प्रयोग किया आचार्य महाराज ने कि ज्ञान विशेष का आविर्भाव माने क्या माने के लिप्तता यही लिप्तता यही लिप्तता क्यों बताई। ये सहज है यहाँ से ज्ञान विशेष का आविर्भाव हमारे परिणमन में होते ही अभी प्रैक्टिकल साइड से देखें तो ऐसे होते ही यही फिर परिणाम को उपयोग को अवलंबन लेने के लिए सरक जाना अनिवार्य हो जाता है। सरक ही जाता है रोक ही नहीं सकेगा कोई लुप्तता को। वैसे जिसके लक्ष्य में अपना आत्मा आ गया है लक्ष्य मैंने स्वरूप निश्चय स्वरूप प्रतिभास उसको सामान्य ज्ञान का आविर्भाव होते ही सरक करके त्रिकाली का अवलंबन हुए बिना त्रिकाली का आश्रय हुए बिना नहीं रहता। यही सूक्ष्मता इस विधि में पड़ी है। इसलिए ये बात बिल्कुल साफ साफ हो जाती है कहीं भी विरोध कह जाए।
समस्या ये आती है कि शादी का दोनों का एक साथ एक समय एक साथ है और एक मेल भी है दोनों की आपत्ति है लेकिन प्रोसेस निर्णय अलग ऐसा फरमाया था तुम्हें अब फरमाया था कि प्रोसेस अलग है स्वरूप का स्वरूप अलग है स्वरूप का ज्ञान अलग है और स्वरूप का ज्ञान करने की प्रोसेस अलग है ऐसा दो मेज उसमें भी अब सत्तान मैं जैसा मैं समझा था पहले प्रैक्टिकल साइड से ऐसा करना चाहिए जो लौकिक परिणाम था ये प्रयोग करते हुए ये ज्ञान का परिणाम अलग है इस पद्धति से ज्ञान सामान त्रिकाली के तरफ जाता है तो इस पद्धति में थोड़ा सा इससे विरोध आता है कि दोनों एक साथ उससे एक तरफ ज्यादा खा जाता हूँ त्रिकाली का और एक तरफ इस पर्याय साइड से चलते हैं हम अपना ब्रेन ज्ञान इससे करते हैं तो कौन सी प्रोसेस हमको एडप्ट करना।
सबसे पहले बात ये कि मुमुक्षु को तो स्वरूप निश्चय की दिशा में अपने सभी प्रयास चालू रखना चाहिए। ये सबसे पहले बात स्वरूप का निश्चय नहीं होगा यहाँ तक जो यथार्थता है परिणाम पुरुषार्थ की जो यथार्थता तो आने वाले हम स्वाध्याय करते हैं। गुरुदेव ने इस पद्धति जो दिगंबर परंपरा में सनातन परंपरा में करीब करीब बंद से हो गई थी वो चालू कर दी तो शास्त्र स्वाध्याय क्यों, यानी ये सभी स्वाध्याय और अध्ययन में जो विकल्पात्मक हमारे विचार चलते हैं उसकी उपलब्धि क्या है, इस प्रवृत्ति की उपलब्धि क्या है, यानी हमें ऐसे करने से किस हद में हमारा काम हो सकता है। एक बात तो साफ है कि विकल्प में निर्विकल्पता नहीं, पर विकल्प निर्विकल्पता का कारण भी बात तो बिल्कुल समझ में न्याय के तौर पर भी आती है। तो फिर भी हम स्वाध्याय करते हैं और ये स्वाध्याय की परंपरा हमारे ज्ञानियों ने और चली आ रही है आदि से, तो इसकी हद क्या, कौन सा अचीवमेंट करना है इससे जो हम हमेशा लगे रहते हैं, स्वरूप निश्चय हो, यानी स्वरूप का प्रतिभास हो, यानी स्वरूप का लक्ष्य, उतने हद तक हमें जाना है। और उतने हद तक भी हम जब ही छा जा सकते हैं, जबकि हमें इस मार्ग का, मार्ग के फल का सही मूल्यांकन होगा, तब इसी मूल्यांकन से हमें स्वरूप निश्चय होगा, तभी स्वरूप निश्चय में स्वरूप का मूल्यांकन होगा। वहां तक स्वरूप का मूल्यांकन नहीं है, ये बात है। तो ये इसका क्रम है, क्रम भी प्रयास करके सही उपलब्धि हो जाए तो संभव है। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए हम जो प्रवृत्ति हमेशा कर रहे हैं इसमें हम कहाँ जाना चाहते हैं, कैसे जाना चाहते हैं, कहाँ तक पहुंच सकते हैं, या ऐसे करते करते सब मिल जाएगा ऐसा कोई मान लिया है इसलिए करते ही रहेगा, ऐसी एक बहुत गंभीर बात आती है कि लक्ष्य थवाने जिन पद निज पद एक था भेदभाव नहीं कोई, लक्ष्य थवाने से न कया शास्त्र, उस शास्त्र जो कहा है उसमें शास्त्र कहने वालों की कोई अभिप्राय या हेतु रहा है तो लक्ष्य कराना का हेतु है उनको, क्यों तो उनको पता है कि ये बोध तो अज्ञानी को दिया जाता है, ज्ञानी के बोध के जो शास्त्र है वो बाकी धर्म नहीं, के बोध के शास्त्र वो बात देते हैं। अब तो ये शास्त्र हम जिसे हाथ में देते हैं तो जिसमें अज्ञान को बोध दिया है, क्यों दिया है, तो उसको लक्ष्य कराने का है। तो वहां तक हमें पहुंचने के लिए ठीक इसी कारण से, इसी हेतु से, इसी के हमारा प्रयास होना चाहिए। जब आगे की सब बात ठीक चल रही है, अगर हमारा लक्ष्य करने का कोई वहां नहीं रहा तो धारणाएं बहुत हो जाएगी, कहां किस तरह की बात चलती है, किस चीज के लिए चलती है, क्या शास्त्र, कौन सा शास्त्र कौन सी शैली में है, क्यों इस शैली में है, ये सभी सुबह थोड़ी बात इसलिए लिया के लिए नियम सार शास्त्र की शैली ऐसी क्यों, आचार्य पुरुषों ने समय सार का करता भी है, यही आचार्य पुरुषों ने प्रवचन के सार का करता है, यही आचार्य पुरुषों ने नियम सार का करता है, यही पंचाष्टिकाएं बनाने वाले यही अष्टपाउल बना रहे, पांचों के पांच शैली अलग अलग है। आप देखिए जो समय सार की शैली है वो प्रवचन सार की नियम सार की, तो पंचाष्टिकाई के अष्टपाहुर अष्टपाहुर तो बिल्कुल दार्शनिक ग्रंथ है, तो स्वतंत्रों के सामने निकला लिखा एक वस्त्र का धागा रखने वाले को विरोध में जाना पड़ेगा, क्या लिखा ये लोग पैसे तो रखते नहीं थे, जब वो लोग निकले वल्कल लेकर के अर्ध फालक हुए जब, तो कैसे तो रखते नहीं थे, उन्हें कुटुंब परिवार में आए हुए थे, पीछे नहीं वापिस नहीं आए थे रस्ते में, बोले जंगल में ही रहते थे हाँ, और न कोई मान अपमान का भी कोई दर्जे का सवाल था, लेकिन बात ले ली इतना संयम पर होने पर भी नहीं चले जाए क्यों। तो जो सही मार्ग है उसी का बोर्ड उन्होंने लगाया, वेजिटेबल बेचने वाले ने शुद्ध घी का बोर्ड लगा दिया, चांदी के दागिने पर सोने का ये लगा करके क्या तो लगाता है ना, सोने का पानी पर बताता है कि ये सोने का दागिना है अंदर में चांदी, ये बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है। तो सारा जो जिन मार्ग है उसकी मार्ग की कुटिलता वहाँ हुई ना, क्या कुटिल मार्ग को सही मार्ग बताया, इसलिए बातचीत में दूर कर सकते मामूली अपराध। तो कौन सा शास्त्र किस शैली में है, किस तरह के जीव के लिए है, इसमें हम संसार में तो साफ लिखा है कि हमारे लिए हमने बनाया है, सुनने वाले को तो जोखम है थोड़ा कम होता है, सुनाने वाले को ज्यादा जोखम है, क्योंकि हमारी पद्धति कुछ ऐसी हो गई कि गुरुदेव हमें समझाते थे पर हम समझने को बहुत थे, ऐसे हमारे यहाँ एक आदमी समझाने को बैठता है और कुछ समझने को ये इतना अनुकूल नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए पहली थोड़ी बदलनी चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अभिप्राय सत्संग की पहली होनी चाहिए, इसलिए हम तो हर जगह जाते हैं प्रश्नोत्तरी का समय रहते हैं,
बहुत उपकार है आपकी
स्वाध्याय कर में हम भाषण करते रहे हैं, आप सुनते रहे हैं, ये बात आपस में विचारों का आदान प्रदान बिल्कुल खुले मंच पर होना, किसी भी प्रकार का संक्षेप उसमें नहीं रहना चाहिए, कोई संकोच नहीं रहना चाहिए। वैसे सत्संग का जो माहौल होता है तो उसमें क्या है कि कौन काम घूमता है कुछ समझ में आ जाता है, समझ के बाद मन से मन में रहता है, काम घूमते हैं पता ही नहीं चलेगा, और शास्त्र सत्शास्त्र आचार्य का शास्त्र सामने है तो इसके विषय में कोई निषेध करने का तो सवाल ही नहीं रहता, भी ऐसा शास्त्र सवाल ही नहीं। हमारे सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते कहाँ कैसे हो गई वो कैसे पता चलेगा, ये तो हमारे विचार जब बाहर आएंगे तभी पता चलेगा, इसमें कहाँ दूर करते हैं क्या अन्यथा समझ होगा। सामूहिक रूप से सत्संग हो गया अपनी पद्धति सबसे इसमें सबसे बड़ा जिसका जोखिम ज्यादा है उसको होगा या सुनाने वाले को होगा, क्यों कि उसको बड़ा जोखिम ज्यादा जोखिम उसको है कि लोग उनको अनुसरण करते हैं या बैठने के ऊंचा स्थान होने से कुछ कोई साइकोलॉजिकल थोड़ा ऐसा हो जाता है कि हम कुछ दूसरे से हम अधिक है, ये सब गड़बड़ी नहीं हो रही थी, ये सब सब सबसे बढ़िया चीज तो एक मार्ग में आने वाले हमारा एक उद्देश्य है हमारा आत्मकल्याण, यहाँ कुछ हेतु से हम आए ही नहीं है, एक ही हेतु से आने वाले हैं, एक ही हेतु सिद्ध होने में तो हमें हमारी अज्ञानता वस्तु उन मार्ग में तो नहीं चढ़ जाएगी, इसी सबसे सावधानी रखते हुए हमको सन्मार्ग ग्रहण करना है, कभी कभी इसमें फल विपरीत नहीं आएगा, वरना गड़बड़ होने का काम की बहुत है, चढ़ने का एक ही रास्ता है, चढ़ने का हजार ऐसे जीवों के साथ सत्संग किया जाए कि जो सिर्फ आत्मकल्याण को ही चाहते हो, इसके सिवा कुछ नहीं, न मान न स्थान न संबंध, कोई संबंध बढ़ाना हो, कोई जानकारी बढ़ाना हो, कोई जैसे परिचय बढ़ाना हो, या कोई अन्य कोई भी लौकिक दृष्टिकोण हो, एक बात भी इसमें नहीं आनी चाहिए, सावधानी से रहना चाहिए कि हमारा एकमात्र हेतु है कि हमारा आत्महित कैसे है, उसी के लक्ष्य में हम जो भी विचार के आदान प्रदान करेंगे सिर्फ इसी लक्ष्य से करें, दूसरा कुछ नहीं करेंगे, जब ही विप्रयास नहीं होगा, और होगा तो भी आपस में एक दूसरे का ध्यान में आ जाएगा, तो ये बात यहाँ तक ही लेते हैं कि हम हमारे साथियों को ऐसा कहें आपस में एक दूसरे कि हमारा दोस्त अगर तुम्हारे ध्यान में आ जाए तो हमें बताने में कोई संकोच नहीं, हमें कोई बुरा लगने वाला नहीं है, हमें इतना अच्छा लगेगा कि आपने बड़ा उपकार कर दिया तो हमारी कोई बता या हमारा कोई बता, तो ऐसे बातों में सरलता भी बन सकता, बिना सरलता सम्यक दर्शन की समीपता के लिए आशा, सम्यक दर्शन की तो आशा सवाल नहीं है, इसकी समीपता भी यही है भूमिका का विषय, इसका मूल्यांकन होना अध्याय के दौरान मूल्यांकन नहीं होता है तो उसी अनुपात में हमारा प्रयास नहीं चलता, हमारा प्रयास हमारे मूल्यांकन के अनुपात में चलता, जैसे हमारे लड़के को पढ़ाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि एक अच्छा से अच्छा इस लाइन में, जो लाइन में वो जाएगा वो अच्छा से अच्छा एक्सपर्ट बन जाए, किसी भी लाइन में वो जाता है किसी लाइन में, क्यों कि इसका मूल्य हमें पता है कि एक किसी भी एक लाइन में एक आदमी का एक्सपर्ट होना इनकी सारी जिंदगी की सुविधाएं इसमें समाविष्ट है, सारी जिंदगी का सुख चैन वहाँ है, तो हमको इस पढ़ाई के वक्त जो है हम कितना सीरियस रहते हैं, पढ़ाने वाले पढ़ने वाले दोनों को कितना सीरियस रहना पड़ता है, कितना रखना पड़ता है, जब ये काम होता है कितना इंटरेस्ट लेना पड़ता है जब काम होता है, तो हमें इसका मूल्यांकन होते ही हमें इसका सही रस आएगा, सही प्रयास चलेगा, जो जिस अनुपात में चलना चाहिए उस अनुपात में चलेगा, वरना तो ये हम जैसे सब्जी लेने को जाते हैं वैसे ही मंदिर जाते हैं,
क्या
तो वहाँ भी 5-10 मिनट में सब्जी खरीद लिया, यहाँ भी 10 मिनट में अर्घ चढ़ा दिया, बहुत निकल आए घर
प्रैक्टिकल में,
मनुष्य के लिए तो सबसे बढ़िया कोई साधन है, ज्ञानियों ने ये कहा कि हमने सत्संग जैसा उत्कृष्ट साधन देखा ही नहीं है, जैसे ही अमृत मिल गया ज्ञानी का कोई सत्संग नहीं हुआ, ये परम सत्सम विचारधारा वाले सत्सम होना
चाहिए।
जो प्रवचन है उसमें राजेंद्र ग्रंथ के लिए वो अनुरोध कर देते हैं। मैं जी और गुरुदेव दोनों जो नए नए उसको आते थे उनको कहते थे राजेंद्र आत्मार्थता के विषय में बहुत सी बातें हुई, सैकड़ों बातें कहिए उतना ही नहीं है, कहने की जो इनकी शैली है वो हद कर दी है। कलम चलाइए बहुत सफल कलम, तो इसलिए वो पढ़ने वाले को आत्मार्थता बहुत अच्छी आती और सही आत्मार्थता आने से वो बच जाता है, नुकसान नहीं करता। आपने लाभ कितना हो और कितने काल में हो एक दूसरा प्रश्न करता है, लेकिन वो नुकसान से बच जाता है।
सम विचारधारा का मतलब
क्या
ऐसा है
कि एक ही उद्देश्य से एक ही हेतु से एक ही कारण से दूसरा नहीं, हमारे को कोई दूसरा कारण नहीं उतना ही। पात्रता का
हमको हमारी पात्रता का ज्ञान
कैसे हो? निशंकता तो पात्रता स्वयं प्राप्त होने से आई जाती है। जैसे कोई चीज हाथ में होती है तो शंका नहीं पड़ती है कि मेरे हाथ में ये चीज है क्या, अपने पर्याय में अपनी अवस्था में पात्रता आती है। पात्रता की शंका तो फिर नहीं रहती, तो पात्रता उपलब्ध है उसकी शंका है। फिर भी उसकी जांच करने के लिए जो हमारा संकलन है दूसरा कुछ न खोज, इस टाइटल पर हमारा एक संकलन है दूसरा कुछ न खोज। ये श्रीमद् जी का वचनामृत गुजराती में ऐसा है कि बीजों का ही शोधमा एक सत्पुरुष ने शोध पछी मोक्ष न मड़े तो मारे पास लई लेजे। आपने सिमर नहीं पढ़ा, सिमर राजचंद्र नहीं पढ़ा ना,
हम हो गया तो पढ़ना बंद कर दें, हम हो गया तो पढ़ना बंद कर दें, काम मंगवाई और मंदिरों में भी बाजी तो धन ऐसा हो गया तो पढ़ना पर बंद कर दें।
क्या हो गया? धन
हो गया।
कैसा हुआ ब्रह्म? सब लोगों का भले विचार हुआ, अपन घर पे तो सुना,
घर पे ही तो हम कर रहे थे, तो अब कुछ दोस्त समझो बच्चे समझो तो बंद कर दो।
कैसे सुंदर बातें लिखी
है,
एक सत्पुरुष ने शोध बीजों का ही शोध हुआ, एक सत्पुरुष ने शोध पछी मोक्ष न मड़े तो सम्यक दर्शन नहीं, मोक्ष न मड़े तो मारे पास थी ले दे, मैं एक तुम्हारा गारंटर हूँ, गारंटी देते हैं। दूसरा कुछ न खोज, एक सत्पुरुष की ही खोज कर फिर तुम्हें मोक्ष नहीं मिले तो मेरे से ले जाना, मेरे पास से ले जाना, मैं दे दूंगा तुम्हें मोक्ष। ऐसा कहते हैं, इतना गारंटी देते हैं। ये तो
सत्पुरुष से क्या कहते हैं?
सत्पुरुष से तो क्या नहीं मिलता है वही सवाल है। सत्पुरुष से तो आत्म कल्याण।
सत्पुरुष का नाम?
सत्पुरुष मैंने ज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, वही सत्पुरुष है। इस काल में तो केवली और मुनि की तो आशा रखना व्यर्थ है। अब कोई सजीवन मूर्ति मिल सकता है तो ये सत्पुरुष मिल सकता है। तो अगर मिल जाता है और जिसको भावना है उसको मिल जाता है, उसका तो बेड़ा पार है। और भावना नहीं है और पुण्य योग से मिल जाता है तो ऐसे तो आनंद बार मिलेगी है, लेकिन हमें ध्यान नहीं दिया कभी। छब्बीस लक्षण दिए हैं वो मिलान कर सकते हैं, पर ऐसे ऐसे हमारे परिणाम है कि नहीं पता चल जाता है हमारी पात्रता। लेकिन इसका एक मीटर भी है, वो 26 लक्षण में एक बात लिखी है कि पात्रता कैसे नापी जाए, नाप कैसे मिलता है। कि जिस जीव को आत्महित की जितनी गरज है उतनी इसकी पात्रता है। जिज्ञासा थोड़ा मानव शब्द पड़ता है, गरजवान कितना है उसकी कितनी पात्रता है। और गुरुदेव इसको बताने के लिए एक गुरुदेव तो दृष्टांत बहुत उत्कृष्ट दृष्टांत दे देते थे। तो वो ऐसा दृष्टांत देते थे कि देखिए भगवान के समोसरण में सौधर्म इंद्र जो 32 लाख विमान का स्वामी है राजा, और एक विमान में कितने आबादी है देवों की, एक एक विमान में असंख्य देव है। अभी तो हिंदुस्तान की वस्ती का बड़ा प्रधान 5 साल के लिए अनिश्चित रूप से हो जाए ना, 5 साल निश्चित नहीं आते तो भी दिमाग बदल जाता है। एक अरब की भी वस्ती तो नहीं है, ये तो असंख्य देव। एक विमान में असंख्य देव होते हैं, ऐसे 32 लाख विमान का वो साहिब है। सब कहते हैं हाँ साफ साफ बोलिए क्या बात है। तो भगवान के संस्मरण में सुनने को जाता है तो जैसा एक कुत्ती का बच्चा छोटा छोटा सा होता है ना, पिल्ला, जैसे पिल्ला बैठता है ऐसे पिल्ला होकर बैठता है, ऐसा दृष्टांत देते थे। 32 लाख विमान का स्वामी पिल्ला बन जाता है सहसा, मतलब क्या है? ऐसा दृष्टांत देने का क्या मतलब है कि ये सत्य सुनने को तुझे कितनी गरज है, देख ये इंद्र को इतनी गरज है, तुझे कितनी गरज है। तो गुरुदेव की धर्मसभा में करोड़पतियों की लाइन लग जाते थे, करोड़पति लोग आगे बैठ जाते थे, कहते थे देखते हमें कोई चंदा मंदा तो हम करते ही नहीं, कभी कर सकते थे लेकिन वो करते नहीं थे। इस भूमिका में कोई चंदा करने की पाबंदी नहीं हो सकती है, ये तो मनुओं के लिए। फिर भी वो शुरू से ही इस मामले में पड़े ही नहीं थे, तो बहुत निर्भीकता से और बिल्कुल निष्प्रियता से अपना जीवन बिताया, तो ऐसे बात करते थे। हाँ जब सम्य दृष्टि इंद्र का ये हालत है तो तुम्हारी कितनी कितनी गलत होना चाहिए, उससे कई गुनी, हाँ गलत होना चाहिए, कई गुनी होनी चाहिए। नहीं है ना, अभी गरज नहीं, कितने गरज है। हमारे तो घर पे एक मेहमान आ जाए ना तो स्वाध्याय पढ़ा रहे तो क्या करे, हमारे बेवाई आ गए, हमारे जमाई आ गया,
बराबर ऐसे ही
हमें तो पुरुषार्थ साध्य लेना है, पर पुरुषार्थ का स्वरूप भी सहज होता है। पुरुषार्थ का स्वरूप बताइए क्या सहज साध्य और पुरुषार्थ साध्य में वास्तव में कोई अंतर नहीं, लेकिन जिसको पुरुषार्थ का स्वरूप कृत्रिम मान रखा है उसी को ये आपत्ति आती है कि सहज साध्य होता है या पुरुषार्थ से होता है, लेकिन दोनों एक ही बात है, पुरुषार्थ सहज ही होता है, मतलब पुरुषार्थ किया नहीं जाता है हो जाता है।
गरज बढ़े तो सहज ही पुरुषार्थ बढ़े, गरज लगे तो सहज ही पुरुषार्थ बढ़े।
मूल्यांकन आने से मूल्यवान चीज पाने की पूरी संभावना संगी पंचेंद्री मतलब हमें है, तो हमारा प्रसाद चले बिना हो जाए।
स्वरूप लक्ष्य की मोक्ष की सही एकमात्र स्वरूप अनुसंधान
शास्त्र स्वाध्याय में वहां तक पहुंचा जाता है, फिर आगे की जो भूमिका है वो तो बिल्कुल सहज भेद ज्ञान की है और अंतरंग परिणामों के लिए आगे।
स्वरूप निश्चय की तरफ एक आपने जो सुने साधक बालक भावो संबंधी व्यवहार भावो अमुख कारणा तो सवाजा जोड़ी जेम प्रथम चीज व्यवहार नो विकल्प करवानो अग्राय राखवा मा आवे अथवा पर्याय ने अंतर्मुख बालवानी इच्छा थी पण पर्याय प्रत्ये साधक ते पर्याय थी सेवा विरुद्ध विकल्प थी अंतर्मुख वादुन परंतु द्रव्य सुहावनी सावधानी चीजा अंतर्मुख करवाए अने प्यारे जा पर्याय ने कथन। अब इसमें जो पर्याय को अंतर्मुख बात होने की अथवा स्वरूप निश्चय
यहाँ तो स्वरूप निश्चय का तो अभाव में ही ऐसा होता है। बात पहली बात क्या किया कि निज परम तत्व के लक्ष्य के अभाव में जो होता है उसमें पर्याय बुद्धि तीव्र हो जाती है। पर्याय बुद्धि में तो है ही जी अनादि से खड़ा है और पर्याय बुद्धि ही मिथ्यात्म है, तो स्वरूप लक्ष्य के अभाव में हमें सुधार पर्याय में करना है। यहाँ से तो हम चालू हुए हैं, हमारा प्रवेश इस लाइन में क्यों हुआ कि हमारी अवस्था में दुख है दोष है अवगुण है ये हमें नहीं चाहिए, यहाँ से तो हम शुरू प्रारंभ किया है, इसलिए हमारा उसी बात पर जोर रहेगा। और पर्याय बुद्धि तो छोड़नी है, ये तो इस लाइन की मेन बात है, तो कहीं पर्याय को सुधार करने के बहाने कोई हमारी पर्याय बुद्धि तो तीव्र नहीं हो जाती है। ये बात हमें शुरू से ही हमारे ध्यान में इतना कहने का अभिप्राय है। वास्तव में जिसको पूर्णता के लक्ष्य शुरुआत होती है उन्हें ऐसा नहीं होता है, ये विषय निकाल रहे हैं, लेकिन हर बात हर जगह कैसे लिख सकते हैं कि जिसको पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ हुआ कि हमें पुनर्निर्दोषता उसको पूर्णता तक पहुंचना है और इतना बड़ा काम करना है और अपने पास इसके लिए कोई पूंजी नहीं है, व्यापार में हमें अरबों के अरब चाहिए, अरबों के अरबों चाहिए, और हमारे पास एक पैसे की पूंजी नहीं, तो हमें कितना परिश्रम करना चाहिए। ऐसी ऐसी स्थिति उसको महसूस होती है। यही स्थिति महसूस होने से उनको कुछ भी पर्याय में जो भी विकास होता है, पात्रता आती है, जागृति आती है, जिज्ञासा आती है, भावना आती है, जैसे जैसे भी परिणाम होते हैं, हमारे प्रयोजन के लक्ष्य की तीव्रता होती है, सूक्ष्मता होती है, कई प्रकार के परिणाम आनुषंगिक परिणाम फिर वो मोक्षता के उत्पन्न होने लगते हैं। एक साथ कहने में क्रम पड़ता है, होते हैं एक साथ। फिर भी कहीं भी हमें ऐसा नहीं लगेगा हमने इतना कर लिया, वो नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य पूर्ण था। और पूर्णता के लक्ष्य में ये सहज हो जाएगा, इसका पुरुषार्थ कृत्रिम नहीं करना पड़ेगा, ये बीच में आ जाएगी सब बातें, तो बीच में आ जाए उसमें सहजता होती है। और उसी को करना, ऐसा करना, वैसा करना, वैसा करना, वैसा करना, तो क्या लिया है? कि ये ऐसा भाव नहीं करना है, ऐसा करना है, उनको पर्याय उनको अंतर में बाल नहीं है, बाल में क्या उनको सहज बढ़ जाती है, इसको बाल नहीं, ऐसा उद्देश्य में आता है। शास्त्र में तो क्या है कि उपदेश और आदेश के वचन इसी शैली में होते हैं जिसको इम्परेटिव स्पीच कहते हैं, जो इंग्लिश ग्रामर पढ़े होंगे उसको मालूम होंगे। इम्परेटिव स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच होती है ना, अनेक तरह की स्पीच होती है, इसको इम्परेटिव स्पीच कहते हैं उसको। तो आदेश और उपदेश में तो यही अच्छा आएगा, ऐसा करो तुम, ऐसा तुम नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, अस्ति नास्ति से आदेशात्मक ध्वनि आएगी वचन में भी। वास्तव में इसी प्रकार से वो नहीं कहते हैं। सहजता मूल चीज है, सहजता को तोड़ने की कहीं भी बात नहीं है, सहजता के विरुद्ध एक भी बात नहीं है, क्यों? वस्तु का स्वरूप अकृत्रिम शाश्वत है, इसका पाने का मार्ग भी सहजी पर अकृत्रिम होना चाहिए, कृत्रिम होना चाहिए। जब हमारे मूल स्वरूप के साथ हमारे परिणामों की सुसंगतता बैठती है, और न भी संगतता स्वतः ही होगी। तो क्या एक प्रकरण है, पर्टिकुलर पॉइंट पर देखा है कि पर्याय में एकत्व अनादि से है और वो बना रहता है, वो छूटता नहीं है, और इस लाइन तत्वज्ञान की लाइन जो पर्याय का एकत्व छोड़ने के लिए उसमें वो बना रहता है या दृढ़ हो जाता है, ये भी संभावना है। तो किस किस प्रकार से उसका व्यवहार निरंतर किया, इसी मुद्दे पे सारा प्रकरण लिखा गया है।
तो इनकी जो बच्चों में जो है मुझे मुझे प्रयास कर उनको वो प्रकट ना हो, ना हो मेरी प्रति पे दो सवाल है, क्या मुझका लक्ष्य होता है ये प्रयास के लिए?
किसका प्रयास भी होते हैं?
तो जैसे अगर जैसे मोक्ष प्रकट कर मोक्ष प्रकट करने को जिसमें आते नहीं निकलिए नहीं आते ऊपर से सारा परमात्मा पड़ा, उसमें अगर प्रकट करने का भी लक्ष्य रखा गया तो क्या इसको पर्याप्त गुरु हो जाएगी?
स्वरूप लक्ष्य बिना तो हो ही जाएगी, इसलिए इतना बात कंडीशन का डाला है। तो बिना स्वरूप लक्ष्य ये हो जाता है, जिसको स्वरूप लक्ष्य है उसको नहीं होता है। मैंने बैलेंस कैसे रखा, हमें पर्याय में सुधार करना अवश्य अवश्य है, फिर भी अवश्य अवश्य हमें पर्याय का आश्रय भी नहीं करना है, वो उतना ही अवश्य है हमारा। तो दोनों का बैलेंस कैसे रखें, ये सवाल होता है। बैलेंस कैसे रखें, आउट ऑफ बैलेंस होने में तो पूरा जोखिम है, एक भी बात नहीं। आश्रय इस तरह करें कि हमारी पर्याय सुधार का ही हमें ख्याल नहीं रहे, हम पर्याय सुधार में चढ़ जावे और आश्रय का विषय छूट जाए हमारे से, बैलेंस नहीं रहा, इम्बैलेंस हो गया। तो ये बात थोड़ी बिखर होती है, फिर भी उसमें बैलेंस रखना, ये इस लाइन की टेक्निक है। जो कुछ खूबी है तो यही खूबी है, अगर ये खूबी हमारे हाथ में आ जाती है तो फिर विरोध नहीं आता है, अविरोध मार्ग मिल जाता है। अगर जहाँ तक ये खूबी नहीं हमारे हाथ में आती है तो कहीं ना कहीं विरोध आ ही जाएगा या उत्पन्न हो जाएगा, विपर्याद हो ही जाएगा।
कारण परमात्मा का इसको पर्यायों से व्यतिरिक्त का पूर्णतः, जो पूर्णतः पर्यायों से व्यतिरिक्त कारण परमात्मा है, उसमें अगर मतलब पर्यायों को सिद्ध करना है, पर्याय को सिद्ध करना है, अगर इस प्रकार की बात पर्यायों से व्यतिरिक्त कारण हो, यद्यपि जैसे कारण परमात्मा का लक्ष्य करने पर स्वयं पर्याय सिद्ध जाती है, लेकिन वो बाई प्रोडक्ट है। मेन चीज क्या है, कारण परमात्मा का लक्ष्य, अगर कारण परमात्मा का लक्ष्य करने पर स्वयं पर्याय की स्थिति हो ही जाती है, लेकिन कारण परमात्मा के साथ ऐसा जो इसमें पर्याय है ही नहीं, परिपूर्ण रूप से पर्याय नहीं है, तो इस प्रकार का लक्ष्य रखा जाए कि मुझे पर्याय को भी सिद्ध करना है। फिर दोनों में रख दिया
है, ये तो प्रश्न चला ना कि दोनों बात संलग्न है, कैसे संलग्न है कि मैं कारण परमात्मा हूँ, है ना, मैं का वाच्य में तो मैं कारण परमात्मा हूँ, ऐसे परिणाम कहाँ हुए, ऐसे भाव कहाँ हुए, कारण परमात्मा में हुआ क्या है? तो इसका तो कनेक्शन है, वो टोटली हम डिसकनेक्टेड तो नहीं कर सकते, ये मूल स्वरूप व्यतिरिक्त है, लेकिन हम जहाँ हैं, जहाँ खड़े हैं, या हम टोटली उसको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, इसके साथ कनेक्टेड ही है।
कारण परमात्मा पर्याय क्या है, मैं कारण परमात्मा, पर्याय क्या है, मैं कारण परमात्मा हूँ, मुझ में पर्याय है, ऐसा पर्याय नहीं कहा, तो वही पर्याय जब मैं कारण, मैं पर्याय से परिपूर्ण रहे कारण परमात्मा, वही पर्याय ये भी लक्ष्य कर ले, मुझे अभी पर्याय को भी शुद्ध करना है, मैं कारण परमात्मा तो हूँ परंतु मुझे पर्याय भी शुद्ध करना है।
ऐसा है कि दोनों का लेवल अलग अलग है, ये जो कारण परमात्मा है, बिल्कुल एक कुआ का तल समझो, बॉटम में है, और ये अवस्था है कुएं के पानी की ऊपर की सपाटी है। अब हमें तल पे जाना है और हम ये कहेंगे कि हमें ऊपर की सपाटी को टच नहीं करना है, हो सकता है क्या? तो जो चैनल है वो तो चैनल को अच्छी तरह समझे कि जो काम होता है तो बिल्कुल अपनी चैनल से होता है, और आगमों में ज्ञान ज्ञान में उसको ठीक तरह से चैनलाइज भी किया है, नहीं किया है तो बात, लेकिन शैली विभिन्न प्रकार की आएगी, वहाँ हम कहीं गड़बड़ी में उलझन में हम फंस नहीं जाए, उतना ही ख्याल रखना। तो अब देखिए प्रैक्टिकली क्या साइड है, आप प्रैक्टिकली देखिए, एक जीव को, नए नए जीव को ले लीजिए, अपन इतना अभ्यास करने वाले को नहीं लेते, क्योंकि उसमें कई प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है, कभी ये पढ़ते कभी वो पढ़ते हैं, कई प्रकार के विविक्षाएँ हैं, इसमें फिर दिमाग लगाना, लेकिन कोरी पाटी समझ पर उसको सभी जीव की समस्या है कि मुझे सुख हो कहीं भी दुख ना हो, और वर्तमान स्थिति में वो अपने आप को दुखी महसूस करता है, क्योंकि अनेक प्रकार के इच्छाएं होती है, इच्छा के अनुकूल किसी को बनने वाले का सवाल ही नहीं होता, किसी को नहीं होता, कितना भी पुण्यवान हो सबों की इच्छा अधूरी ही अधूरी रहती है, इसलिए दुखी तो दुखी रहता ही। सब कोई बुद्धिमान है, विचार मानती है, इसको सुखी होना ही है, तो इस समस्या की गहराई में जाना चाहता है। इस समस्या की गहराई में जाने वाले को ही यहाँ विचारवान है, विचार करने वाले बुद्धिमान को जगत में बहुत है, लेकिन ऐसी समस्याओं की गहराई में जाने वाले को विचारवान कहते हैं। जाने तो ऐसे विचारवान जीव को ये होता है कि वास्तव में ये सब क्या हो रहा है, सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, पर क्या मेरी समझ में, मेरी बुद्धि में कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं की जा सकती कि मैं सभी बातों को सही रूप में ही समझ सकूं। तो कोई भी समस्या है उसमें सोचने का होता है, तो कोई आदमी इस तरह से सोचेगा, कोई इस तरह से, लेकिन हर एक का एंगल अलग अलग है। अब कौन सा राइट एंगल है, तो विचारवान जीव को ये होता है कि मेरे सुख के लिए क्या मेरी बुद्धि में, अगर मैं बुद्धिमान हूँ तो मेरे सुख के लिए मेरे बुद्धि का मैं उपयोग करना है, प्रयोग करना है, तो मैं उतना नहीं प्रयोग कर पाऊँ कि मैं हर हालत में मैं सुखी हूँ, ऐसा ही राइट एंगल मेरे बुद्धि में हो, दूसरा कुछ नहीं हो, इस स्थान पर जाना, इस स्टेज पर मेरे स्थान कैसे जाना, ठीक है। अच्छा, अब इसको खोज करनी पड़ेगी कि ये सब क्या चीज है। तो भीतर में जैसे दुनिया है, सारा जगत है, बहुत वैविध्य है, तो भीतर में भी एक दुनिया है, एक भाव की है। अब महत्व किसका, सारे संसार को ये बाहर की दुनिया, इस विचारवान जीव को अपने भावों की दुनिया का महत्व दिया गया। क्या सुख दुख यहाँ होता है, सुख लड्डू मिलने से नहीं होता है, लड्डू मिलने से सुख हो तो एक लड्डू मिलने से जो सुख हुआ, दस लड्डू मिलने में दस गुणा होता और सौ लड्डू मिलने में सौ गुणा होता, लेकिन ऐसा होता इसलिए राइट एंगल नहीं, लड्डू मिलने से सुख की सही दृष्टिकोण नहीं है, तो ये कौन सा है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में कोई भीतर में जाता है, गहरा में जाता है, तभी उनको तात्विक रूप से सब बात समझने का एक दृष्टिकोण प्राप्त होता है। एलिमेंट्री क्या बात है, इसमें कैसी है, क्या उनकी शक्ति लगती है, इसको सारी होता है। तो उसमें ज्ञानियों के या श्री गुरु के नए संस्कार इस जगह पर आने पर दूसरों को मिलते हैं, लेकिन वो ग्रहण नहीं करते, इसलिए मिलते हैं ऐसे हम नहीं कहते हैं, इस जीव को मिलते हैं।